बॉन्ड्स, अंग्रेजी में शादी के बंधन में बंधे हुए, तो ये लोग अपने मफादात की निगरानी करते हैं। मैं अपना जाती तजुर्बा सबसे ज़्यादा मोतबर होता है, मैं बताता हूँ। मैंने जब 1966 में CSP का इम्तहान पास किया, ज़ाहिर है मेरा नाम अखबारों में छपा था, बहुत वाह वाह हुई, बहुत दाद मिली, तो मेरे बहनोई अल्लाह बख्शे वो मोटर पार्ट्स के बिजनेस करते थे। उस वक्त कराची में मोटर पार्ट्स एसोसिएशन के जो सदर थे, मैं उनको जानता था, वो मेरे बहनोई के बहुत अजीज दोस्त थे, बुजुर्ग थे, मैं उनको चचा कहा करता था। मेरे बहनोई ने मुझसे कहा कि चचा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मरहूम हो चुके हैं, चचा तुमको बुला रहे हैं। मैंने कहा चचा को मेरी याद कैसे आ गई। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि बेटा तुमने तो हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। भाजी साहब सुनिए, उन्होंने कहा बेटा तुमने तो तुम हमारा नाम फख्र से बुलंद कर दिया है, तुम्हारा नाम छपा है, तुम मेरिट पर आए हो, तुम अब पाकिस्तान की सबसे आला सर्विस के में शामिल होने वाले हो, अब तो बस एक ही काम रह गया है। तो मैंने कहा चचा क्या काम रह गया। कहने के बेटा शादी भी तो करनी है ना। मैंने कहा हाँ चचा वो शादी करनी है, हो जाएगी। उन्होंने बगैर किसी तकल्लुफ के मुझसे कहा कि बेटा मेरी बेटी से शादी कर ले, मैं तेरे वजन के बराबर तोल कर सोना दूंगा। ये अल्फाज थे, मैंने सुना, मैंने कहा, मैं हंस पड़ा। मैंने कहा चचा मैं बाजार में बिकने के लिए तो नहीं आया, लेकिन अगर बाजार में बिकना ही है तो आपने हजरत यूसुफ का किस्सा तो सुना होगा। यूसुफ की जब नीलामी बाजार मिस्र में लगी है तो यूसुफ के बहुत से खरीदार थे, बेशुमार खरीदार थे, लेकिन खरीदारों में एक वो बुढ़िया भी थी जो अपने हाथ का कटा हुआ सूत की एक लच्छी लेकर यूसुफ को खरीदने के लिए आई थी। मैंने कहा चचा उस बुढ़िया का वाकया याद है, तो मैं भी एक एक यतीम सैदानी के हाथों बिक चुका हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं वही था, मैं चचा के लिए पहले भी वही था, वही करामत था,
मगर अब पोजीशन थी आपके पास।
जो डिबेटर था, जो अफसाने लिखा करता था, जो हर तरह के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता था, लेकिन क्यों अचानक मैं उनके लिए अहम हो गया, इसलिए कि मैं मुल्क की सबसे आला सर्विस का रुकन बन गया था।
सही सही,
ये है प्लूटोक्रेसी,
ये है अल्मिया जो जिसका मैं जिक्र कर रही थी। तो वो लोग जो बेनिफिट लेने वाले हैं वो आज भी इन उमरा के इर्द गिर्द हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो आर्मी के लिहाज से हों, तो वही लोग हैं जो सिस्टम को करप्ट करते हैं।
वही करप्ट करते हैं, और वो उसको करप्ट करते हैं सिर्फ अपने मफाद के लिए।
That's what I'm saying.
कौम का मफाद उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता।
सही।
कौम का मफाद उन्हें अजीज नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज है। और यही इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है, ये पाकिस्तान के हक में जहर है। ये अवाम के मफादात की पासदारी नहीं करता, उनके मफादात का तहफ़ नहीं करता, निगहदारी नहीं करता। पाकिस्तान जैसे माशरे को जो तबकात में बटा हुआ है, देखो चार सूबों में, पंजाब में जागीरदारी है, चौधरी हैं, सिंध में वडेरे हैं, बलूचिस्तान में सरदार हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मलिक हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो अपने आप को ज़मीन पर खुदा का अवतार समझते हैं। ये गर्दानते हैं कि इनके मुंह से निकला हुआ हर हर्फ हर्फ आखिर है। पाकिस्तान को ज़रूरत है सदारती निज़ाम की, और मैं दुआ मांगता हूँ कि जब भी इंतखाबात हों और इमरान खान को इंशाअल्लाह दो तिहाई अक्सरियत तो यकीन ही मिलेगी, बल्कि मेरा तो अंदाज़ा यह है कि तीन चौथाई अक्सरियत भी मिल जाएगी, तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि मुल्क के आईन में तब्दीली करके پاکستان کو پارلیمانی نظام کے جھنجٹ سے نکال کے، اس عذاب سے نکال کے صدارتی نظام حکومت لانا چاہیے. ہمارے پاس، ہمارے سامنے ترکی کی مثال ہے. میں ترکی میں سفیر رہا ہوں، میں جانتا ہوں طیب اردوغان کو. طیب اردوغان پر بھی وہاں کی فوج نے 5 سال کے لیے، وہاں جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس سے 5 برس کے لیے طیب اردوغان کو نااہل قرار دلوا دیا تھا. اس لیے کہ جب طیب اردوغان میئر تھے استانبول کے، تو انہوں نے اپنی ایک تقریر میں ناظم حکمت، جو ترکی کا سب سے بڑا شاعر ہے، وہ ترکی کا اقبال ہے، اس کے ایک شعر کا حوالہ دیا تھا. ماجد صاحب سنیے، اس شعر میں یہ ہے کہ یہ جو مسجد کے مینار ہے نا، یہ میرے نیزے ہیں، میرے بھالے ہیں، اور یہ جو مسجد کے گنبد ہے یہ میری ڈھال ہے. الزام یہ لگایا گیا طیب اردوغان پر کہ یہ، اس نے تو مصطفیٰ کمال کے سیکولرزم کی سے بغاوت کی ہے، اس نے مذہب کو سیاست میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا اس کو نااہل قرار دیا جائے. تو جب طیب اردوغان کی ترقی اور انصاف پارٹی نے انتخاب جیتا ہے، تو اس وقت طیب اردوغان اقتدار کے لیے نااہل تھے. ان کے دست راست عبداللہ گل وزیر اعظم بنے تھے. اس کے بعد طیب اردوغان نے پہلی موقع پر پارلیمانی نظام کو ختم کر کے صدارتی نظام وہاں پہ رائج کیا. اور اس صدارتی نظام کی کامیابی ہم سب نے دیکھی کہ جب فوج نے طیب اردوغان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی، تو ترک عوام ان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے تھے اور ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے.
بالکل صحیح آپ نے کہا. میں ظاہر ریڈیو پہ ٹائم کی ایک، آج کل تو نومبر دسمبر تو گزر گیا ماشاءاللہ نومبر. میرا کوئک آپ سے سوال ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دنیا جہان کے جنرلز کے بارے میں علم نہیں ہے، پاکستان میں آرمی کے جنرل چینج ہوئے ہیں. طیب اردوغان آپ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ قرآن بھی ہیں، وہ تبدیلی بھی لے کے آئے ہیں، اور ایران نے سٹینڈ انٹرنیشنل لیولز پہ بہت جگہوں پہ لیا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ جنرل عاصم منیر کو انوالو کر رہے ہیں. وی مسٹ ویٹ فار دا ٹائم. اگر یہ غلطی کریں تو ہمیں اس چیز کو ڈسکس کرنا بالکل چاہیے. ایٹ دا مومنٹ جو ہے ہمیں ملک کی حفاظت کی ہی بات کرنی چاہیے. زبان بہت خراب ان آفیسرز کے لیے استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان پوزیشن کے تقدس کو پامال کر دیا ہے. ایک منٹ مجھے آپ کا اس کے لیے چاہیے، اور انشاءاللہ اگلے منڈے کو پھر ملاقات. میں بہت معافی کی خواہش کر رہا ہوں، ٹائم کم ہے.
بالکل تم جو بات کہہ رہی ہو بالکل درست ہے، لیکن جب کوئی خود اپنی عزت نہ کروانا چاہے.
وہ تو باجوا صاحب تھے، ہی از لیونگ ٹمورو، آج رات.
لیکن باجوا نے جاتے جاتے جو کام کیا دیکھو نا، وہ دھمکی دے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مظلومیت کا پورا گوشوارہ سنا رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بھائی صبر تو تم نے قوم کا آزمایا ہے، تم نے ملک قوم کے صبر کی انتہا کر دی ہے، تو یہ سوال تو قوم کو کرنا چاہیے کہ ہمارے صبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے.
بس اب تو ہسٹری ہو جائیں گے، کل
ہو جائیں گے. لیکن عاصم منیر کے لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ باجوا نے جو غلاظت پھیلائی ہے، جو گندگی پھیلائی ہے، اس سارے کوڑے کو صاف کرنا عاصم منیر کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. باجوا ضرور چلا جائے گا، لیکن باجوا کے بغل بچے تو اب بھی بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارا کوڑا عاصم منیر کو صاف کرنا ہوگا، بالکل جس طرح سے کہ سلیٹ صاف کی جاتی ہے. نئی تحریر اس پر لکھنے سے پہلے سلیٹ کو صاف کرنا بہت ضروری ہے.
بہت شکریہ. میں یہاں اناؤنس کرنا چاہتی ہوں ایک پاکستان کے حوالے سے، تو آپ کے لیے ایک سوال آیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوال بھی آپ کو کرتی ہوں. صاحب پاکستان میں آپ کو بتائی ہے جناب ایس ایم منیر صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ایس ایم منیر صاحب، ان کی ڈیتھ ہوئی، ہارٹ اٹیک ان کو ہوا، اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ. ایکس چیئرمین آف دا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان، انہیں بخار تھا اور और आज जो कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है उन्होंने उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ की तस्दीक की है। इन्होंने बहुत सी जगहों पे खिदमात भी पंजाब ने कैनेडियन सिटीजनशिप भी थी और ही वाज एक्सपेक्टेड टू कम टू कैनेडा आया करते थे एक्सपेक्टेड टू कम। आज आसिम मुनीर साहब की एस एम मुनीर साहब की डेथ हुई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि ये डायलिसिस पे भी हुआ करते थे, इनकी किडनी की प्रॉब्लम थी मगर ये डेथ जो है ये हार्ट अटैक की वजह से हुई है। सर आपके लिए जो सवाल आया मैं क्विक आंसर इसका चाहती हूँ ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। उन्होंने लिखा है टेल गौरी साहब दैट दिस इज AJK आजाद जम्मू कश्मीर लोकल बॉडी इलेक्शन पाकिस्तान पीपल पार्टी वन मोर सीट्स देन PTI डिस्पाइट PTI गवर्नमेंट देयर। गवर्नमेंट उनकी है मगर पीपल्स पार्टी ने सीट ज्यादा जीती हैं। ये आपके लिए सवाल आया है, इसका क्विक जवाब दे दीजिए।
जमहूरियत में ये होता है, आजाद जम्मू और कश्मीर के लोग शायद पीपल्स पार्टी को ज्यादा अपनी क्यादत का अहल समझते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजफ्फरनगर में जो दारुल हुकूमत है वहां तो PTI ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। जो
बाहर के इलाके हैं,
बाहर के इलाके हैं वहाँ जरूर पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की है। तो ये तो
इट्स अ डेमोक्रेसी,
ये तो जमहूरियत बल्कि आजाद जम्मू और कश्मीर के आवाम को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने सियासी शऊर और बसीरत का मुजाहरा किया है।
बहुत खूबसूरत तरीके से आपने कहा दिस इज़ व्हाट द डेमोक्रेसी इज। मगर सर आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत माजरत की ख्वास्तकार हूँ आपको रोकने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम लिमिट मेरे साथ है। जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, कोशिश यही है कि ये लोग जिनका एक्सपोजर है यही आपसे आके बात करें। सवाल आप लोगों के हुआ करते हैं जिनको मैं इन तक पहुँचाती हूँ, जवाब इन माहिरीन के होते हैं।
वक्त की पाबंदी करती हो, हुदूद में रहना ही बेहतर अमल होता है। हुदूद से जब तजावुज किया जाता है तो वहां पर बेराह रवैये।
दूसरी बात, कौमों के गिरने की एक वजह उनकी अपने वैल्यूज से गिर जाना भी है। एक नसीहत कौम को कर दें कि वो कहते हैं जोश में बाहोश रहने में तुम्हारी शान है, यानी अल्फाज का चुनाव।
बिल्कुल बिल्कुल, अखलाकियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और बात वही असर करती है जो सलीके से की जाए, जिसमें शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल हो।
बहुत शुक्रिया सर।
गाली देने से तो कोई बात नहीं बनती, वो पलट कर कोई गाली दे देगा तो फिर क्या बात रह जाएगी। बात इस तरह से करनी चाहिए कि वो दिल नशी हो जाए।
जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Yummy! Kya chicken biryani hai? It's yum! This veg biryani. Shan biryani masala. Chahe chicken biryani mein daalo ya veg biryani mein. Dono ekdam lazeez banti hain. Shan, khushiyan chakh lo.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।
Gateway Chevrolet in Brampton has announced a limited-time special offer on Chevrolet and GMC. Are you ready to drive into fall? Only 2.99% finance rate for up to 72 months on pickup trucks. Test drive our new 2.7-liter turbo trucks now and get a $500 gas card on your purchase. Eligible Costco members get a $750 bonus on select SUVs. Come to Gateway Chevrolet at 2 Gateway Boulevard today, Queen Street and Airport Road in Brampton. Call 905-791-7111 or gatewaychevrolet.ca.
क्या आप ब्रैम्पटन में नए आए हैं या 1 जनवरी 2019 से ब्रैम्पटन मुंतकिल हुए हैं और ब्रैम्पटन को एक्सप्लोर और मजीद जानना चाहते हैं? ब्रैम्पटन ट्रांजिट और ब्रैम्पटन लाइब्रेरी आपको नए आने वाले बस टूर में शामिल होने की दावत देते हैं। 6 और 8 दिसंबर को होने वाला ये दौरा सिटी हॉल, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेंटर, बस, ट्रेन स्टेशन और लाइब्रेरी की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा करेगा। इस बस टूर के लिए सीट्स महदूद हैं। रजिस्टर करें brampton library.ca या फिर कॉल करें 9057934636. Brought to you by Brampton Transit and Brampton Library.
RIS, Reviving the Islamic Spirit Convention and Penny Appeal Canada presents Atif Aslam Live in Concert. इस लाइव कॉन्सर्ट में आतिफ असलम हमद, नात और सुफियाना कलाम पेश करेंगे। ये प्रोग्राम दिसंबर की 22 तारीख को मेट्रो टोरंटो कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। तमाम डोनेशन पाकिस्तान में सैलाब जदगान से मुतासरा लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल होगा। इस प्रोग्राम की टिकट सिर्फ $49 है। आज ही RISConvention.com पर जाएं और अपनी टिकट हासिल करें।
Good news for holiday season shoppers. Liza Cosmetic is back with huge discount on brand name product. Ji haan, zabardast brand name selection of perfumes, cosmetics, skin care brands, health beauty brands, fashion purses, designer sunglasses and chocolates. Professional hair care and nail colors. Up to 80% discount. Aapko aana hai 135 Commerce Valley Drive East in Markham. Sales sirf Friday, Saturday, Sunday, Monday. From November 19 to December 11th. Liza's Warehouse Sale. For more information, lizascosmetics.com.
ਲਓ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਲੋਐਸਟ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੇਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਲੋਐਸਟ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਕਾਲ 9058747171
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस रिन्यूअल ऑप्शंस मॉर्गेज डिफिकल्टीज डाउन पेमेंट इश्यूज सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फंड्स सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659 लाइसेंस नंबर 10530
Share more with family with CIBC Global Money Transfer. We know achieving your goals in Canada happened with the support of family. With CIBC Global Money Transfer, we have zero transfer fees. So more of your money goes to thanking those who matter most. Share more in over 120 countries. And now get up to $300 back on your first transfer with promo code GMTEVENT. It's our way to share too. For details, go to cibc.com/GMTEVENT. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply.
جی ہاں پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید بہت شکریہ ہمارے اسپانسرز کا منڈے کے دن آج بالکل ولیج ٹیسٹ کھلا ہے ہماری آپ سے درخواست ہے 4141 ڈکسی روڈ پہ ولیج ٹیسٹ پہ ضرور تشریف لے کے جائیں 9052323663 ان کا نمبر ہے ہمارے آج کے پروگرام کو تعاون دیا ہے لٹل ٹری ہاؤس نے بھی لٹل ٹری ہاؤس 18 مہینے سے آنورڈ تک کے بچوں کو آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں گراؤنڈ فلور کے اوپر ہے اور انکوائری کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ پہ تشریف لے کے آئیں لٹل ٹری ہاؤس اسلامک چائلڈ کیئر سینٹر جہاں پہ تعلیم مطلب جو ہماری اونٹیریو کا کریکلم ہے وہ جس میں بیسک لینگویج سائنس میتھ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ایجوکیشن بچوں کو آداب وہ سکھائے جاتے ہیں 9058426553 ان کا نمبر ہے آئیے صاحب ایک اور ملاقات کی طرف لے کر کے بڑھتی ہوں جناب شمشاد احمد صاحب اگر کہیں اگر آپ کو سٹیٹک ملے اور ضرور آپ کو سٹیٹک ملے گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج شازیہ صاحبہ کی طبیعت ناساز تھی وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہے کہیں اگر سٹیٹک ملے تو لوکل نمبر 6478724900 8724900 पे डायल करके आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। हम www.eawaz.com हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपके साथ हैं। एक्स एम्बेसडर जनाब शमशाद अहमद, एक गुफ्तगु आपकी नजर।
यू आर वॉचिंग ई आवाज टीवी, वॉइस ऑफ कम्युनिटी।
جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں کوئکلی آپ کی ملاقات کروائیں گے ہم شمشاد احمد صاحب سے، ریٹائرڈ امبیسڈر ہیں، فارمر فارن سیکرٹری بھی آپ رہے ہیں، 40 سال کے اوپر آپ کی یہ ڈپلومیٹک سروسز ہیں محیط یہ عرصہ، اور امبیسڈر شمشاد احمد از اے کریئر ڈپلومیٹ ہیونگ سرو 40 years ویریس پوسٹ کے اوپر، اور پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو دا یونائٹیڈ نیشنز آپ بھی رہے نیو یارک میں۔ تو یقیناً مختلف لیڈر سے آپ کی ملاقات ہوئی، ملک کے حالات کے اوپر جتنی گہری نظر رکھتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گی جناب شمشاد احمد صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ اس دیر وقت میں رات میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ السلام علیکم سر۔
جی وعلیکم السلام۔
میں آپ کو اس وقت کی پاکستان کی صورتحال کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں۔ عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ روکا ہے، اور کیا یہ الیکشن کی جانب لے کے جا سکتا ہے جو کہ عمران خان صاحب کا مین ایک مسئلہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ فوراً الیکشن ہونے چاہیے؟
عارفہ دیکھیے، جو سوال ہے آپ کا اس کو اتنا جواب آسانی کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر اتنا آسان جواب ہوتا تو میرے خیال میں شاید یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو ابھی جس طریقے سے حالات بدل رہے ہیں تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ جو اب نئی ٹیم آئی ہے حکومتی سطح پر اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں، تو وہ جو اپنے پیش رو کی پالیسیاں تھیں یا ان کے جو آخری اقدامات تھے ان کو انڈو کر کے ہی یہ چیز حل ہو سکتی ہے۔ یہ سوچنا کہ اب حالات خود بخود سیٹل ہو جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا اس طریقے سے ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے ایک حکومت لا کر بٹھائی گئی ہے، پہلے تو یہ ساری بات دراصل ایک مختصر اتنی کی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ سوچنا پڑتا ہے اس قوم کو کہ یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں، ہماری قسمت میں تو نہیں تھی کہ پہلے تو یہ ہے کہ کچھ سیاسی طبقوں کو بےمانی کا لیبل لگایا گیا، ان پر مقدمے چلائے گئے، ان کے ہر قسم کے ثبوت دیے گئے کہ یہ بدنام اور بےمان ترین لوگ ہیں پاکستان کی سیاست میں، انہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا، ان کو سزا دلوا دی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ ایک اور شخص کو حمایت کے ساتھ آتے ہیں اور اس کا نام ہی سلیکٹڈ پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ 3-4 سالوں کے بعد آپ کے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلے ہونا نہیں چاہیے تھا، دراصل بات یہ ہے، اور یہ اچھی بات ہے جانے والے آرمی چیف نے اپنے فیئرویل ریمارکس میں جو یہ ایک اندیا دیا ہے کہ فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاست میں اب انٹرفیئر نہیں کرے گی، لیکن اصل چیز یہ ہے انہوں نے کہا کہ فروری میں یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن فروری میں تو ایک عمران خان کی جو موجودگی تھی وہ بذات خود ہی اس سیاسی مداخلت کا نتیجہ تھی، اور پھر اب سیاسی مداخلت کے ذریعے آپ نے رجیم چینج کی، اور اس رجیم چینج میں بیرونی طاقت کو انوالو کیا، وہ سب کو پتا ہے، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ غلط باتیں تھیں، وہ سب پتا ہے، وہ سائفر کا قصہ ہر چیز جو تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ تو میں بلکہ کل جس وقت ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ تقریر کر رہے تھے فیئرویل، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی، بلکہ میں نے ایک دو لوگ میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے کہا کاش جنرل باجوہ کو آج کچھ اچھی مت آ جائے کہ وہ اپنے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اب آئندہ ہم نے غلطیاں نہیں کرنی ہیں، جب وہ یہ کہنے لگے کہ لیٹس موو اہیڈ، بجائے اس کے وہ یہ کہتے کہ جو آخری ہم سے غلطی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری طرف سے ایک آخری مرتبہ جو سیاسی ایک مداخلت کا ایک مظاہرہ ہے وہ یہ कि लोगों की मर्जी होनी चाहिए, वो फैसला करें कि कौन सी हुकूमत चाहते हैं, मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जाता है वो हो, या फिर इमरान खान जिसकी हुकूमत को हटाया गया था गलत तरीके से। मतलब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना था तो वोट सही होने चाहिए थे, खरीदे गए लोग। हमारे यहां तो हॉर्स ट्रेडिंग और ये लोटाक्रेसी इतनी बदतरीन मुजाहरे हुए हैं कि शर्म आती है हम सबको कि ये किस किस्म की जमहूरियत है। ये किसी मुल्क में इस किस्म के वाकयात नहीं हुए, और ये पाकिस्तान की बदनामी जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से हुकूमत को उतारा गया है, अमरीका को इन्वॉल्व किया, बल्कि अमेरिकन फील एम्बेरस कर रहे हैं। मेरे पास कुछ अमेरिकन दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमें खुद एम्बेरस हो रही है कि ये जमहूरियत के साथ क्या खेल हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, आपने जो सवाल किया है, एक ही हल है और वो यही है कि किसी तरीके से भी हो, चाहे फौज की मुदाखले से हो या फिर ये जो मौजूदा हुकूमत जो लाभ मुसल्लत की गई है उनमें अकल आ जाए कि अब अगर जमहूरियत के वजूद को वो चाहते हैं हिफाजत करना तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि इंतखाबात हो। लेट द पीपल डिसाइड वो किसको पसंद करते हैं। ये एक जमहूरियत का बुनियादी उसूल है और वो जब तक नहीं होगा तो ये मुल्क जो है ये इतने बहरानों की शिद्दत में चला जाएगा कि शायद, बल्कि पहले ही भी मैं तो कह चुका हूं कि जो ये रिजीम चेंज का वाकया हुआ है या और जिस तरीके से हुआ है ये मशरकी पाकिस्तान के सानहे से भी बदतर ट्रेजेडी थी पाकिस्तान के लिए। उस वक्त तो हमने आधा मुल्क गवाया था, अब हमने पूरा मुल्क एक ऐसे एनवायरमेंट धकेल दिया है कि बड़ी ताकत का पिट्ठू बन जाएं, मईशत के बहरान की दलदल में फंस जाएं, और फिर जिन लोगों को आपने बेईमानी के सारे तमगे दिए हुए थे उनको दोबारा आपने मुसल्लत ला के बैठा दिया। तो ये तो आपकी सारी सोच और स्ट्रेटजीज पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बेहतर होगा कि इस क्वेश्चन मार्क को डिलीट करते जनरल बाजवा जाने से पहले, मैं ये कहना चाहता हूँ।
शुक्रिया सर। सर मेरा इस वक्त कंसर्न ये है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त कह दिया कि अगर दो सूबों में वो अपनी असम्बलियों को तहलील कर देते हैं, विच इज KPK एंड पंजाब, और जनाब परवेज इलाही और मोनस इलाही ने भी यही कहा है कि अगर हमें हुक्म दिया गया तो हम ऐसा ही करेंगे, अगर ये इस्तीफे देते हैं तो आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास क्या ऑप्शंस होंगे?
देखिए, अब गवर्नमेंट की ऑप्शंस तो वही बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि सच्ची बात तो ये है सियासतदानों के जहनों में जो कुछ हो रहा होता है वो कम से कम हम जैसे लोगों की सोच में नहीं आ सकता। और मैंने तो कई दफा, मुझे सब पार्टियों की तरफ से पेशकश होती रहती थी कि भी आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले हमारी, तो मैंने कह दिया था कि मैं कभी सियासतदान बन ही नहीं सकता। तो सियासतदानों का एक अपना रवैया, अपनी अपना माइंडसेट होता है और उसमें उसूल परस्ती कोई नहीं होती, उसमें झूठ बहुत होता है, तो मैं उनके बिहाफ पर कोई पेशीनगोई नहीं कर सकता कि वो क्या करेंगे। हाँ, सिर्फ इतना कहूंगा कि इमरान खान ने फिर एक मरतबा एक पॉजिटिव माइंडसेट का मुजाहरा किया है और कौम को इस मौजूदा बहरान से निकालने के लिए, असूलन ये बहरान जनरल बाजवा जाने से पहले निकाल देते तो हमारे आने वाले आर्मी चीफ का काम बहुत आसान हो जाता, क्योंकि इस सारे मरहले में, सारे प्रोसेस में जितना नुकसान हमारी फौज को हुआ है, बदकिस्मती से फौज हमारा एक अजीम तरीन इदारा है। मैं तो हमेशा मेरी पूरी जिंदगी फौज का दिफा करते हुए गुजरी है आरिफा। मैं आपको बताऊं कि जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी, हम लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ, हम न्यूयॉर्क गए, व्हाइट हाउस में क्लिंटन के साथ मुलाकात होनी थी, तो मुलाकात से पहले क्लिंटन के जो एडवाइजर थे उसमें स्टोव टैलबर्ट और ब्रूस राइडल और इंडरफर्थ और सैंडी बर्गर थे, तो दो ने अपनी किताबों में लिखा है, स्टोव टैलबर्ट ने और ब्रूस राइडल ने, कि हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात से पहले क्लिंटन को ये मशवरा दिया था कि जब तुमने नवाज शरीफ को प्रेशर में लाना होगा और न्यूक्लियर हथियारों के दबाव के तहत का जिक्र करके, तो मेक श्योर दैट शमशाद इज नॉट इन द ईयर शॉट, कि वो फौज का बंदा है, उन्होंने ये कहा था उसको। तो मुझे हमेशा फख्र रहा था कि मैं फौज के साथ मुझे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सलामती और सालमियत की अलामत है। तो मुझे हमेशा खुशी होती थी जब कोई मुझे कहा था कि मेरा कभी किसी उस एतबार से ना मैं फौज से कोई हिदायत लेता था, बल्कि जितने मैंने फैसले किए, चाहे वो इंडिया के साथ अमन के प्रोसेस को नेगोशिएट करने के हों, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्टों के हवाले से हों, चाहे वो फिर कारगिल के हवाले से, फौज इसी तरीके से हमारी मीटिंग्स में हमारे साथ स्टेक होल्डर्स के तौर पर शामिल होती थी, जिससे दूसरी मिनिस्ट्रीज होती थी। मैं कभी उनको तरजीही सलूक नहीं दी और ना उन्होंने कभी मुझे कहा कि आपने ये करना है ये नहीं करना। तो इस तरीके से मैंने हमेशा फौज का दिफा किया। जितने हमारे लोग आजकल के बड़े खड़पैंच बन के मीडिया में हर तरह तरह के जिनको कहते हैं ना गद्दार किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं, वो हर वक्त कहते हैं कि जी फौज ये करती है वो करती है। मैं हमेशा कहता था कि फौज कभी मुदाखलत नहीं करती, वो सिर्फ एक खला जब होता है उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए आती है, और वो वैक्यूम उस वक्त पैदा होता है जब सिविलियन हुक्मरान जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते और उस खला को पुर करने के लिए आती है। लेकिन इस दफा जो खला पैदा हुआ, अगर इमरान खान डिलीवर नहीं करना था तो मैं बहुत खुश होता अगर जनरल बाजवा खुद टेक ओवर कर लेते, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बेहतर था कि बजाय अमेरिका के पिट्ठू के तौर पर उसकी हुकूमत का वो किया जाए, दूर किया जाए, एक मरतबा फिर हम जिसको कहते हैं ना गुलामी का तौक अपने सर पर बिठा लें, खुद तुम इतना हौसला होना चाहिए था कि खुद टेक ओवर कर लेते, फौजी हुकूमत आ जाती और बाद में वो हुकूमत जब भी समझते स्टेबलाइज सिचुएशन होती है फिर जो भी बनता। तो मैं हमेशा इन टेक ओवर को जस्टिफाई, मुशर्रफ को मैंने सारी दुनिया में तस्लीम करवाया जब मुशर्रफ का कूब हुआ था। तो मैं तो
कंसर्न इस वक्त ये है कि मिस्टर इस्माइल साहब ने उनका बाकायदा ये इंटरव्यू है और बहुत शेयर भी हुआ, बहुत वायरल भी हुआ, उन्होंने कहा कि नैब के कवानीन हमने नहीं तरमीम की, हमसे करवाई गई, जिसमें उन्होंने तीन चार दफा सवाल का जवाब जब दिया तो जनाब बाजवा साहब का उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद उनके असासाजात जब लीक हुए हैं तो इस बात पे भी बड़ा एतराज है कि 6 साल के बीच में किस तरह उनके असासाजात बने। तो मिफ्ते इस्माइल साहब को उसके बाद हटा दिया गया, उसकी जगह पे जनाब इसहाक साहब आए। बल्कि मेरा अगला सवाल आगे जाके आपसे होगा कि मिफ्ते इस्माइल साहब ने इस वक्त पाकिस्तान का जो सिचुएशन है उसके बारे में अपना कल का जो बयान दिया, मैं उस पर भी बात करूंगी। क्या पाकिस्तान में कोई थिंक टैंक है और बाजवा साहब ने अपनी आखिरी स्पीच में अपनी एसेट्स का, और एक जनरल के पास इतनी एसेट्स कैसे आई, उनके फादर इन लॉ के पास इतनी एसेट्स कैसे आई कि ये अरबों में रकम चली गई, तो यहां से लोगों के दिल में खदशे जो है वो ज्यादा बढ़े और एतमाद की कमी हुई। क्विक फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस।
नहीं, मेरे पास तो और कोई अल्फाज नहीं आरफा इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि मुझे अब तक याद है 89 में या 90 में बेनज़ीर भुट्टो ईरान आई थी जब मैं वहां पर सफीर था, तो उनके साथ 3-4 उनके क्लोज ब्यूरोक्रेट थे सेक्रेटरी लेवल के, तो और उनमें से मैं दो तीन को जानता था कि बड़े करप्ट थे। तो मैंने खुद मेरे दोस्त से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये बताओ मुझे ये कि जो लोग ये पैसा बनाते हैं ये किस वजह से बनाते हैं और कहाँ रखते हैं। तो वो तीनों के तीन बोले कि यार शमशाद असी भी यही सोचने हैं। अब ये जो करप्ट लोग होते हैं उस प्रॉब्लम उनके बारे में उनकी सहनीत के बारे में आप तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो मुझे तो नहीं पता, सच्ची बात यह है मुझे ये नहीं पता कि जनरल बाजवा करप्ट है, मुझे ये नहीं पता कितनी दौलत बनाई है। जो अखबारों में आ रहा है जो कुछ बाहर आ रहा है उससे सिर्फ मैं ये कह सकता हूं कि मेरा शर्म से सर झुक रहा है। और जब मैं इंडियन टेलीविजन पर देख रहा हूं तो मैं देखता हूं कि हमारी फौज की किस तरीके से बेइज्जती हो रही है। अल्लाह ना करे ये
अपने यहाँ पर अपना एक चीज इशू की है, ये कल और परसों की बात है, उन्होंने ये कहा है कि कोई शख्स फौज के किसी शख्स के बारे में अगर बात करेगा 5 लाख रुपए जुर्माना होगा साथ जेल होगी। अब पाकिस्तान में तो आप ये सजा कर लेंगे मगर इंटरनेशनल मीडिया जो इसके बारे में बात कर रहा है उसको आप क्या करेंगे? इट्स अ ग्लोबल विलेज दिस डेज दुनिया, और लोग फिर बाहर की बातों पे बिलीव करेंगे, अपनी बातों पे अपने मीडिया की तो बात पे बिलीव ही नहीं करेंगे।
है अंतर आरफा, बात ये है कि बहुत मिसहैंडल किया गया ये जो रिजीम चेंज की गई है। ये मैंने कहा ना कि ये 71 की ट्रेजिडी से भी ज्यादा भयानक रही है नुकसान के हवाले से। पाकिस्तान को इतने शदीद नुकसान हुआ है हर लिहाज से, यानी ना जमहूरियत है कहीं, ना मईशत है, ना अवामी सतह पर देख लीजिए कितनी मायूसी फैल गई है। और फिर ये है कि फौज की इन्वॉल्वमेंट से मुझे ज्यादा इस परेशानी है, बहुत दुख हुआ है। मेरा दिल करता है कि सच्ची बात है कि अब जो नई टीम आई है, मैं खुद किसी वक्त चाहता हूं कि मैं उनके साथ मिलकर डिस्कस करूं कि आप लोगों को मैं किस तरीके से सीधे रास्ते दिखा दूं कि ये पाकिस्तान क्यों बना था, किस तरह बना था, और हमने किस तरीके से इस पाकिस्तान की सलामती और सालमियत को कायम रखना था। और कायदे आजम ने जो बातें कही थी वो न नेहरू ने की, न हिंदुस्तान ने की, न किसी और दुश्मन ने की। वो हर बात जो कहते थे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, वो हमने खुद अंदर से की है। यानी मुझे इतनी शर्म आती है आजकल के हालात देखकर, इस वजह से मैंने अगले रोज ही, मुझे परेशानी के आलम में, दुख के आलम में, जब मैंने एक इंडियन प्रोग्राम देखा तो मैंने सोचा कि शायद मैं आज का दिन ना देखता जो आज पाकिस्तान का दिन है। सच्ची बात है
सर, मेरा आपसे यहाँ सवाल है कि आप जैसे अशखास जो हैं, बहुत से थिंक टैंक्स आउट ऑफ पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा थिंक टैंक्स पाकिस्तान में भी है जिसमें हर इदारे के लोग हों और गलतियों की निशानदेही करते हुए बेहतर सूरत हाल, यानी अंदर रहते हुए हम उन गलतियों की निशानदेही करके सही रास्ते का तयन कर सके?
मैं बताता हूँ आपको, आज ये ऐसा है कि थिंक टैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग मगरब में देखते हैं, कैनेडा में या अमेरिका में, वहां सारे के सारे थिंक टैंक्स जो हैं वो आजाद होते हैं। सिर्फ एक या दो हैं जो मसलन कांग्रेस फंड करती है या अदरवाइज कॉरपोरेट सेक्टर्स करते हैं, क्योंकि वहां कॉरपोरेट सेक्टर जो है, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े इदारे हैं, वो थिंक टैंक्स बनाते हैं और वहां उन थिंक टैंक्स की जो आउटपुट होती है वो बाकायदा हुकूमतों तक जाती है, स्टेट डिपार्टमेंट जाती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देखती है। मुझे याद है 80s में वहां जो थिंक टैंक्स वाले बैठे प्रोफेसर, यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर अपने पेपर्स मुझे पढ़ाया करते थे, तो मुझसे कंसल्ट करते थे, तो मैं उनको ऐसे पेपर फेंक देता था कि तुम लोग अफसाने लिखते हो। लेकिन कुछ सालों बाद मैंने देखा वो अफसाने मैं बाकायदा अमेरिका की पॉलिसियों में, गल्फ में इंप्लीमेंट होते देख रहा था। तो इस तरीके से वहां थिंक टैंक्स जो हैं वो बाकायदा एक इनपुट देते हैं। हमारे यहाँ थिंक टैंक्स नहीं है, अगर हैं भी तो वो हमारे इदारे जो है ना, इंटेलिजेंस इदारे, वो चलाते हैं बुनियादी तौर पर। और तो प्राइवेट सत्ता पर तो ना बिजनेस वालों को तौफीक है, ना कॉरपोरेट सेक्टर को तौफीक है। यहाँ मेंटेलिटी फर्क है। ये मैं बताऊं कि यहाँ पे ये और भी बातें की जाती है कि जी ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो अवामी सतह पर भी देखा जाए, ये आपने कहा ना कि इतनी जब अमेरिका की इमदाद मिलती थी तो जो ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां होती हैं सेक्रेटरी लेवल की, तो वो सब भाग के जल्दी से एनजीओ बनाए जाते हैं, उनसे लाखों रुपया मठोरा जाता है, उनकी ट्रांसपोर्ट ली जाती है, वो एनजीओ के जरिए से पैसा लूटा जाता है। अब अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर जो पाकिस्तान को दिया, वो सारा का सारा, ना तो उससे कोई सड़क बनी पाकिस्तान में, ना कोई पुल बना, ना कोई स्कूल बना, अस्पताल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, कोई मोटरवे नहीं बना, कोई टनल नहीं बनी। वो चाइना जो है वो अवाम, पाकिस्तानी अवाम की मदद करने के लिए हर चीज बनाता है, लेकिन वो जो पैसा अमेरिका से आता था वो खाया पी जाता था। चकशजाद में फार्म हाउसेस बने हुए हैं, उसमें सिविल लोगों को भी है, मिलिट्री लोग, हर बंदे के वहां पे है पैसे, और फिर रियल एस्टेट में पैसे जा रहे हैं, गलत किसी इलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं, इस्लामाबाद में देखिए हर मल्टी बिल्डिंग जो है। तो ये हमने तो एक करप्शन के, पाकिस्तान को करप्शन का बना लिया जरिया, वो चाहे सिविल हो या मिलिट्री हो, हर सतह पर। हालांकि मैं हमेशा फौज का दिफा करता था कि जो डीएचएस बना रही है फौज, वो दुनिया में बेहतरीन मिसाल है कि जिस
क्या ऑप्शन आपको क्या लगता है कि सूरत हाल संभल नहीं रही और बहुत से लोग आर्मी के लिए जो अल्फाज का चुनाव है वो इंतहाई गलत है, आम आदमी के दिल में नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या नजर आ रहा है आपको? इमरान खान साहब अपने रिजाइन कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, और क्या हम मार्शल लॉ की तरफ देख रहे हैं, अल्टीमेटली इंटरनल सिक्योरिटीज का मामला है?
देखिए मैं आई वुड प्रेफर ए मार्शल लॉ, मैं बता दूं उसकी वजह है। अव्वल तो बात यह है कि जो एक टोला है जो जिस वक्त मुसल्लत है, ये वो टोला है जिसको हमने पिछले 70 साल से ट्राई किया हुआ है। इनको मजीद ट्राई करना जो है वो मुल्क को बर्बादी में फेंकना होगा। तो बाकी रहा इमरान खान, उसको अभी लोगों ने ट्राई नहीं किया, जो 3-3.5 साल रहा है वो डिलीवर इस वजह से नहीं कर सका। और क्योंकि मेरी एक दफा बात हुई उससे, मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे साथ कोई, तुम्हारी टीम कोई नहीं थी, तुम्हारे सारे गिद्ध तुमने रखे हुए थे, तो उसने मुझे बताया उसने कहा मुझे दिए गए दिए जाते रहे, तो वो ये सोच रहा था कि फौज उसकी मदद कर रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो लोग उसको मिले वो वही गिद्ध थे जो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर पहले मुल्क को लूट रहे थे और अभी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो अभी इमरान के बारे में तो उस वक्त पता चलेगा जब इमरान वाकई काम करेगा, लेकिन तीन साढ़े तीन सालों में उसने एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जो मैं समझता हूं कि वो अनप्रेसिडेंटेड है, और वो है कि कौम में वो बेदारी ले आया है कि उनको पता चल गया है कि 70 सालों में उनको एक्सप्लॉयट किया गया है, मिलिट्री हुक्मरानों ने भी सिविल हुक्मरानों ने भी उनको यूज किया गया है और तमाशे कर करके ये नालायक और ना अहल सियासतदानों को सामने रख के फौज पीछे से हुकूमत करती थी और लोग समझते थे कि ये जिम्मेदार है ये गलत है, तो अजीब किस्म के तमाशे होते रहे। अब वो सिस्टम बंद करना होगा, अब वो अवेयरनेस लोगों में आ गई है, जिस तो दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि जिन अब बोतल से बाहर आ गया है ये अब दोबारा बोतल भी नहीं जाएगा। तो एक तो ये है, दूसरा हल सिर्फ मुल्क का यही है कि फौज चाहे आपने फैसला कर लिया कि सियासत में नहीं जाना, लेकिन जो पाकिस्तान की सलामती और सालमियत वाली जिम्मेदारी है उसके तहत आप अपनी जिम्मेदारी से नजर नहीं मोड़ सकते। यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट द थिंग्स राइट जहां से आपने मुल्क में वो एक क्राइसिस पैदा किया है जिसकी वजह से एक यानी कौम के वजूद को खतरा पैदा हो गया है। तो सबसे पहले तो एक यही है कि इलेक्शन के अलावा और कोई भी हल नहीं हो सकता। मैं बता
दूं, यू एक्सपेक्ट इलेक्शन इन फरवरी एंड मार्च,
किसी हुकूमत के लिए किसी शख्सियत के लिए नहीं है, वो अवाम का हक है। अवाम चाहते हैं फैसला करने के, अब हमें हक मिलना चाहिए, तो फौज सिर्फ अवाम की तरफ अपनी जिम्मेदारी पूरी करके एक इंतखाब का रास्ता मुहैया करे ताकि एक इंतखाब फ्री और फेयर इलेक्शन जिसमें फौज का कोई रोल नहीं। और हाँ, इलेक्शन कमीशन अलबत्त जरूर बदलना पड़ेगा, क्योंकि उस इलेक्शन कमीशन के बारे में एक बड़ी मेजर पार्टी ने बहुत क्वेश्चंस उठा दिए हुए हैं। वो किसी वक्त भी एक फ्री और फेयर इलेक्शन करने के कैपेबल नहीं है।
अगर उसमें तो फिर फौज की मदाखलत जरूरी होगी ना, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं लोगों की है जिनका इलेक्शन कमीशन।
सिर्फ फौज जिम्मेदार नहीं है इस सारे बोहरान में, इक्वल जिम्मेदारी अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम इक्वल जिम्मेदारी अदलिया की भी है। मैं बताऊं, ये अदलिया और फौज ये कई सालों से पिछले 90 की दहाई के बाद जो हुकूमतें तब्दील जब से मुशर्रफ गया है, तो फिर उसमें ये एक डुअल रोल होता था इनका कि वो हुकूमत डिसमिस की जाती थी नहीं आती थी, अजीब अजीब तमाशे होते थे, हम सबको तो पता था क्या हो रहा है, लेकिन यही है हम सोचते थे कि मुल्क की भलाई के लिए हो रहा है, लेकिन इस दफा जो कुछ हुआ है मुल्क की भलाई के लिए नहीं हुआ, मुल्क को इतना बड़ा डैमेज किया गया है कि अगर वो जल्दी ना उसको अनडू किया गया तो फिर मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए।
मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा दिया गया, जनाब इसहाक साहब को कोई करिश्मा नहीं हुआ।
मिफ्ता इस्माइल का नाम ना लीजिए प्लीज,
मैं अगर उन्होंने कल कहा है कि पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्टसी,
कुछ नहीं किया, उसका रोल कुछ भी नहीं है, ये एक जोकर है जिसको कहते हैं ना जोकर, वो आज नून लीग में है, कल को शायद वो पीपल्स पार्टी में चला जाएगा। मैंने ऐसे सियासतदानों के साथ मैं बात भी नहीं करना चाहता, ना उनके बारे में ना मैं उनके साथ।
सर उन्होंने कल कह दिया है कि पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्टसी,
ये तो सबको पता है, ये उसने तो नहीं कहा, ये तो हमारे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फौज की कतई जिम्मेदारी नहीं है कि वो पाकिस्तान की मईशत की जिम्मेदारी वो ले। हाँ, वो अपने बजट के बारे में डिस्कस कर सकती है, जो इकोनॉमी के मामलात हैं वो हुक्मरानियत का तकाजा है, हुक्मरानियत की जिम्मेदारी है, तो जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो चाहे इलीगल है या लीगल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह है कि उनकी जिम्मेदारी है। और अच्छी वाली इकोनॉमी सच्चे रास्ते पर अच्छे रास्ते पर चल पड़ी थी, और वो रास्ता वो था जिस जो रास्ता सिंगापुर मलेशिया जापान और कोरिया की जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुई थी उसमें ये नहीं होता कि 2-3 सालों में हालात बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है मईशत की, पॉलिटिकल सिस्टम की, अवामी सोशल सिस्टम की, वो 20-25 साल लगते हैं। तो वो आ रहा था रास्ता, उस तरफ ले जा रहा था, क्योंकि बुनियाद जो थी उसने डाली वो रूल ऑफ लॉ थी कि कानून के तहत हर चीज फैसला होगा, इकोनॉमी का भी, करप्शन खत्म की जाएगी। यानी इमरान कहता है मुझे कहा जाता था हर कदम पर कि करप्शन की बात ना करो, करप्शन हमारा एक गिवन सिस्टम है। ये अजीब बात मैंने सुनी है कि करप्शन की बात ना की जाए, भाई करप्शन ही तो मसला है आपका सबसे बड़ा।
سر بہت شکریہ. آپ کہاں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں الیکشنز جو ہیں، رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد؟
وہ پہلے ہو جائیں یا بعد میں ہو جائیں، میرے لیے ہمیں لیکن الیکشن ہونے ضروری ہیں، اور جلد دا سونر دا بیٹر. بس جتنی دیر کریں گے معیشت اور تباہ ہوگی، لوگوں میں جو خلیج ہے اختلافات کی اور جو جتنی یعنی ایک طرح سے بدامنی جو پیدا ہوئی ہے، بلڈ شیڈ کا خطرہ جو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اولین ذمہ داری ہے ہماری فوج کی جو ہے کہ وہ اپنی ساکھ کو ریسٹور کرے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. بس
میرا سر یہ کوشچن، حالانکہ تفصیل زیادہ مانگتا ہے مگر ہم آؤٹ آف ٹائم جا رہے ہیں، آج کی جو صورتحال ہے ایشیا کی بہت خوفناک نظر آئی جب چائنا میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں ان کو ہٹایا جائے، تو کیا محسوس کرتے ہیں اس کے اثرات پاکستان پہ؟ اور
یہ جو چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے نا اب بہت یہ سب پرابلم پیدا کرنے والی طاقتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے،
ولیج ناؤ
گلوبل ولیج ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کی امید کر لینی چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان، آپ نے بھی جیسے کہا کہ بینکرپسی کی ورش کے اوپر ہے اور ہمارے اثاثہ جات نہ ہونے کے برابر اب ہو گئے ہیں، اور اب ہم نے ہمیشہ ہاتھ اپنا ایسے رکھا ہے، اب جو ملک بھی اس ہاتھ کے بیچ میں پیسہ ڈالے گا وہ پالیسیز اپنے مطابق بنانا چاہے گا، کوئی آنسر؟
دیکھیں میں ایک تو بات بتا دوں کہ یہ جو پیسے کا مسئلہ ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. میں آج ہی اپنی ایک پرانی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اپنی ڈائری، تو میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں فورن سیکٹری تھا اس وقت بھی یہ آئی ایم ایف کا انہوں نے ہم پہ کنڈیشن لگا دی تھی کہ جی آسٹیرٹی ہونی چاہیے، گورنمنٹ کے خرچہ کم کریں، تو اس وقت بھی نہ ہم آسٹیرٹی کر رہے تھے، کرپشن بدستور چل رہی تھی، تو ہم جو ہے نا اسی وتیرہ جو ہے یہ ہماری خون میں ہے، کرپشن اور فضول خرچی. جتنی آپ کی سائز ہے سول بیوروکریسی کا یا فوج کا، فوج کا ٹھیک ہے کہ ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ضروری ہے، اور فوج کو تو میں اولین اہمیت دیتا رہا ہوں ہمیشہ اور ابھی بھی دیتا ہوں کہ فوج ہماری لاسٹ بیسٹ ہوپ ابھی بھی فوج ہی ہے، چاہے انتخابات ہوں یا نہ ہوں. اور میں نے کہا نا کہ یہ معیشت وغیرہ کے مسئلے تو حل ہوتے رہیں گے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صرف اگر حکومت جو ہے وہ بجائے وی آئی پی جس میں 80 بندوں کی کیبنٹ ہے اور جس طریقے سے وی آئی پی پرکس پرولیجز دیے جا رہے ہیں اور گاڑیاں آ رہی ہیں کسی ملک میں، آرپا ایک بات بتا دوں، دنیا کے کسی ملک نہ امریکہ نہ آپ کو کینیڈا میں کہ سرکاری ملازمین یا ایم این ایز یا پارلیمنٹ کے ممبروں یا منسٹروں کو سرکاری خرچ پر گاڑیاں نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں یہ ہری نمبر پلیٹ کا کلچر ایسا ہے، ایک ایک وزیر 10-10 گاڑیاں رکھتا ہے، اور یہ گاڑیوں سے اگر آپ گاڑیوں کا سسٹم ختم کر کے مونیٹائز کر دیں کہ ہر بندہ اپنی ٹرانسپورٹ خود یوز کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ لیول کا آدھا بجٹ کم ہو جائے گا. لیکن
بہت شکریہ، کسی نے بلکہ یہ سوال بھی کیا کہ ٹیچرز پروفیسرز اپنا تیل خود ڈلواتے ہیں، تو یہ اتنے بڑے بڑے آپ کے ججز جو ہیں یہ اپنا تیل خود نہیں ڈلوا سکتے؟
ججوں کی ٹینکیاں بھری جاتی ہیں. میں کہتا ہوں جتنی مراعات ججوں کو ہیں وہ اتنا انصاف تو نہیں دے رہے لوگوں کو.
چاہیے بالکل ریفارمز ہونے چاہیے. سر آپ کا بہت شکریہ. اور آپ نے جب کینیڈا کا ذکر کیا تو میں کل سیٹرڈے کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا، سنڈے کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتی ہوں. کینیڈا کی جو وائس پرائم منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر کرسٹیا فری لینڈ، آپ کو پتا ہے کہ کل دوپہر میں وہ اپنا کھانا خود اپنے کچن میں کھڑی ہو کے بنا رہی تھی، بیچ میں اسکائپ کی کال آتی ہے، انہوں نے کھانے کے چولہے کو بند کیا، دکھایا بھی، اور انہوں نے اپنی وہ اسکائپ کی کال اٹینڈ کی. دس از دی گریٹنس آف دا ویسٹ. سر آپ کا بہت شکریہ.
کینیڈا کی مثال دے رہی ہیں، انڈیا کی مثال لے لیجئے، وہاں جو ایک جرنیل لیفٹنٹ جنرل جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ ایک کمرے کا فلیٹ ہوتا ہے اس کا گھر جو ملتا ہے اس کو، اور ان کے پاس کوئی گاڑیاں نہیں ہوتی. جس طریقے ہمارے جو کور کمانڈرز ہیں یا 3-star جنرل ہیں، آپ دیکھیں گاڑیاں جو موسٹ ایکسپینسو لگژری گاڑیاں ہیں، بی ایم ڈبلیو، آڈی، یہ ہیں جیسے، اور وہ ان کا انٹوراج ایسے جا رہا ہوتا ہے جس طرح گورنر کا انٹوراج ہے.
ہمارا تو ایک کیپٹن اگر ریٹائر ہو جائے یا خدا حافظ بھی کہہ دے وہ بات ایسی ہوتا ہے جیسے جنرل بات کر رہا ہوتا ہے.
کوئی مستقبل نہیں ہے، بس میں یہ کہوں گا
اللہ تعالیٰ بہتر کرے. آپ کو چاہیے کہ آپ تھنک ٹینک ایک ڈیولپ کریں ود ان پاکستان رادر دین آؤٹ آف پاکستان. بہت شکریہ جناب شمشاد احمد صاحب. انفارچونیٹلی ریڈیو پہ اور ٹیلی ویژن کے اوپر ہمارے پاس ایک ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے, ہم نے اسی میں سب کچھ مکمل کرنا ہوتا ہے. سوالات بہت سارے ہیں, دکھ بہت سارے ہیں, اور جب اور میں کوئی وی لاگ دیکھ کے پروگرام ترتیب نہیں دیتی. میری کوشش یہ ہے کہ متعلقہ شخص کو ہم آپ کے ساتھ لے کے آئیں, اسی سے بات کریں, سوال آپ لوگوں کے ہوا کرتے ہیں, بیکاز آئی ریپرزینٹ یو. پلیز ڈو سبسکرائب آر چینل. سر آپ کا بہت شکریہ, اور میں آپ کے ساتھ تاریخ کا ایک ورق ضرور دہرانا چاہوں گی اگلے پروگرامز میں. بہت شکریہ,
انشاءاللہ ضرور. تھینک یو,
خدا
حافظ.
ہاتھوں پہ کھیلتی ہے تبسم کی بجلیاں, سجدے تمہاری راہ میں کرتی ہے کہکشاں. دنیا حسن و عشق کا تم ہی شباب ہو, چودویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے, جو رات آئی تو ستارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے شرمائی, کوئی خوشبو کہیں بکھری لگائے زلف لہرائی. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے, جو رات آئی تو ستارے بن گئے. خط تجھے فضا رنگی ادا رنگی یہ اٹھلانا یہ شرما چلے جانا, بنا دے گا نہیں کس کو جوان جادو یہ دیوانہ. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے, جو رات آئی تو ستارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے جہاں تو ہے وہاں میں ہوں, सा हूँ तू सावन है मेरी दुनिया ये नजरे है मेरी जन्नत ये दामन है लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे
जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे पत्थर तो न समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान मुझे पत्थर तो न समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली राह मेरी वही जिस पे चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग मैं यहां से वहां जैसे ये जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे
तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन थम गया आसमां जाने मन जाने जान तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन थम गया आसमां जाने
देखते चलते होते इन होंठों की हसरत।